नमस्कार भारत, तारीख 7 नवंबर दिन शनिवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। म्यांमार में राष्ट्रपति ने कहा कल होने वाले चुनाव के जो भी हो नतीजे सरकार और सेना को होंगे मंजूर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे श्रीनगर में, तो दिल्ली में सरकार के समर्थन में राष्ट्रपति से मिलेंगे कई कलाकार और साहित्यकार।
मेरे जैसे बहुत सारे करोड़ों हिंदुस्तानियों को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति साहब तक ये पैगाम पहुंचाएं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि देश में इंटॉलरेंस का माहौल है।
जानेंगे बिहार में चुनाव नतीजों से पहले क्या है सियासी हलचल, और खेल की खबरों का कार्यक्रम खेल खिलाड़ी भी होगा, साथ ही होगी अखबारों की समीक्षा भी। लेकिन सबसे पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, दिलनवाज पाशा से। म्यांमार के राष्ट्रपति थीन सिन ने कहा है कि उनकी सरकार और देश की सेना रविवार को होने वाले चुनावों के नतीजों को स्वीकार करेगी। राष्ट्रपति ने टीवी पर दिए अपने संबोधन में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे और देश के लोग की पसंद का प्रतिनिधित्व करेंगे। चुनावों के लिए प्रचार शुक्रवार को ही समाप्त हो चुका है। विपक्षी नेता आंग सांग सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को चुनावों में बढ़त मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। रूस ने बीते शनिवार मिस्र के सिनाई में हुए विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आने तक मिस्र के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। रूस का कहना है कि वह काहिरा के साथ मिलकर सुरक्षा का स्तर बढ़ाएगा। हालांकि रूस का कहना है कि जरूरी नहीं है कि क्रैश के पीछे चरमपंथी ही हों। ब्रिटेन और अमेरिका का कहना है कि संभवतः विमान बम विस्फोट का शिकार हुआ है। फ्रांसीसी समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्टों के मुताबिक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से बम विस्फोट के संकेत मिले हैं। ब्रिटेन ने भी शर्मल शेख के लिए उड़ानें रद्द कर दी थीं। अमेरिका ने भी इस क्षेत्र से अमेरिका आने वाली तमाम उड़ानों की सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने कहा,
These measures are not being taken in response to a specific threat to the homeland, but it is the prudent exercise of an abundance of caution.
ये नए सुरक्षा उपाय देश की आंतरिक सुरक्षा को किसी विशेष खतरे के तहत नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि सिनाई प्रायद्वीप में विमान हादसे के बारे में अमरीकी अधिकारियों को मिली जानकारियों के बाद सतर्कता के लिहाज से उठाया जा रहा एक समझदारी भरा कदम है। ये थे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट के शब्द। एथलेटिक्स की अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था IAAF ने डोपिंग स्कैंडल के संबंध में 4 लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और इसे महीने होने वाले मोनाको में होने वाला अपना पुरस्कार समारोह रद्द कर दिया है। IAAF के नए अध्यक्ष सेबेस्टियन कोई ने कहा है कि यह जश्न मनाने का समय नहीं है। जिन पर कार्रवाई की गई है उनमें संस्था के पूर्व प्रमुख लैमिने डियाक के बेटे मसाटा डियाक और एंटी डोपिंग विभाग के पूर्व प्रमुख गैब्रिलिये डोले और 2 रूसी अधिकारी शामिल हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कनाडा से अमरीका के लिए प्रस्तावित विवादित तेल पाइपलाइन की योजना को निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा की स्टोन पाइपलाइन योजना देश हित में नहीं है और ना ही इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और ना ऊर्जा सुरक्षा में। कनाडा के नए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेव का कहना है कि वे इस फैसले से निराश हैं, लेकिन अमेरिका के साथ उनके देश के रिश्ते किसी एक परियोजना से ज्यादा अहम हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अफ्रीकी देश बुरुंडी की में राजनीतिक हिंसा के अंत का आह्वान किया है। BBC समाचार।
स्वागत है आप सबका BBC हिंदी सेवा के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव, और आपके साथ मैं हूं आज अशोक कुमार। आज के कार्यक्रम में भी बिहार के चुनावों की चर्चा करेंगे, जहां कल वोटों की गिनती होगी। लेकिन जिस तरह बिहार के चुनाव पर देश भर की नजरें टिकी हैं, उसी तरह दुनिया भर की नजरें टिकी हैं बर्मा या कहिए म्यांमार के चुनावों पर, जहां कल वोट डाले जाने हैं। इस चुनाव में सबकी दिलचस्पी का कारण है लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सूची, जिनकी पार्टी NLD को इन चुनावों में जीत मिलने की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। लेकिन सूची की पार्टी को जीत तो 1990 के चुनावों में भी मिली थी और 60% वोटों के साथ शानदार जीत मिली थी, लेकिन उन्हें सत्ता नहीं सौंपी गई और उसके बाद सैन्य शासन ने दशकों तक उन्हें नजरबंद रखा। इसी पृष्ठभूमि में मौजूदा राष्ट्रपति थीन सिन ने कहा है कि रविवार यानी कल होने वाले चुनावों के जो भी नतीजे होंगे उन्हें सरकार और सेना दोनों मानेंगी। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
म्यांमार में रविवार को होने वाले ऐतिहासिक आम चुनावों में लंबे समय से सैन्य शासन में रह रहे लोग देश के लिए नई सरकार चुनेंगे। 5 दशकों से सैन्य जुंटा के शासन के बाद म्यांमार ने हाल के सालों में राजनीतिक सुधार देखे हैं। ये चुनाव बीते 25 सालों के पहले खुली उम्मीदवारी वाले चुनाव हैं। बावजूद इसके चुनाव नतीजों के स्वीकारे जाने को लेकर संदेह है। यही वजह है कि राष्ट्रपति थीन सिन ने भरोसा दिया है कि चुनाव नतीजों का सम्मान किया जाएगा। शुक्रवार को टीवी पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति सिन ने कहा, चुनाव नतीजों का सम्मान किया जाएगा या नहीं इस बात को लेकर चिंताएं हैं। मैं ये दोहराना चाहता हूं कि हमारी सरकार और सेना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के नतीजों का सम्मान करेगी। हम सभी को समन्वय बनाना होगा और चुनाव नतीजों के आधार पर ही राजनीतिक परिदृश्य तैयार करना होगा। म्यांमार में ब्रितानी राजदूत एंड्रयू पैट्रिक मानते हैं कि जितने अहम ये चुनाव हैं, उतना ही अहम इनके नतीजों को मान्यता मिलना भी है।
Well, it's a very important moment. This country hasn't had a potentially democratic election since the 1960s.
ये एक बेहद अहम क्षण है। 1960 के बाद से इस देश में प्रजातांत्रिक चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में यदि ये चुनाव कामयाब होते हैं तो लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में अहम मील का पत्थर साबित होंगे। चुनाव अहम है, लेकिन ये भी बहुत अहम है कि नई सरकार को मान्यता मिले और सत्ता का हस्तांतरण हो। माना जा रहा है कि विपक्षी नेता आंग सांग सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD पार्टी बढ़त हासिल कर सकती है। चुनाव को लेकर उत्साहित सूची कहती हैं, हम लोगों के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और देश के राजनीतिक विकास की जिम्मेदारी लेने के उत्साह से बहुत प्रोत्साहित हैं। 1990 में हुए चुनाव में सूची की पार्टी ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन सैन्य शासकों ने नतीजे स्वीकार नहीं किए थे। सूची ने इस बार भी चुनावों से पहले धोखाधड़ी का डर जाहिर किया है। शांति का नोबेल पुरस्कार जीत चुकी सूची देश के संविधान के तहत राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। संविधान के तहत 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में बहुमत हासिल करने के लिए सूची की पार्टी को कम से कम 67% सीटें जीतनी होंगी। सूची का कहना है कि यदि उनकी पार्टी जीती तो सरकार वो ही चलाएंगी।
I will make all the proper and important discussions, decisions with regard to government. I'll run the government.
सरकार के संबंध में अहम फैसले मैं ही लूंगी, मैं ही सरकार चलाऊंगी। हमारा राष्ट्रपति ऐसा होगा जो हमारी पार्टी की नीतियों के तहत चलेगा। म्यांमार में हो रहे इन चुनावों को लेकर ऐसा कोई भरोसेमंद ओपिनियन पोल नहीं है जो बता सके कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन राष्ट्रपति के भरोसे के बाद भी अभी अहम सवाल यही है कि म्यांमार पूरी तरह लोकतांत्रिक सरकार के लिए तैयार है या नहीं।
बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार आपको सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
बीबीसी इंडिया बोल।
बिहार का नतीजा 8 नवम्बर को आएगा। राज्य में महागठबंधन या NDA की सरकार बनेगी। चुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव पर भी डालेंगे प्रभाव। तो बिहार चुनाव का देश की राजनीति पर कितना होगा असर? किसका विकास मॉडल चलेगा, बिहार का या गुजरात का? इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस। बहस में शामिल होने के लिए डायल करें 1800011 और अपने सवाल आप हमें bbchindi.indiabol@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आज जरूर हिस्सा लीजिएगा बीबीसी इंडिया बोल में। बिहार में 2 महीनों से जारी गहमा गहमी कल चुनाव नतीजे आने के बाद खत्म होने जा रही है। बेशक सबको नतीजों का इंतजार है, लेकिन टीवी चैनलों के चुनावी सर्वेक्षणों ने आम लोगों के लिए स्थिति को बेहद उलझा दिया है। उनके लिए अब भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि जनादेश किसके पक्ष में जा सकता है। ऐसे में जब तक नतीजे नहीं आ जाते, सभी पार्टियों के लिए जीत के जो दावे किए जा रहे हैं उन पर भला कौन सवाल उठा सकता है। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
मतदान पूरा होने के बाद और नतीजे आने के पहले एग्जिट पोल के अनुमानों ने चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले लगभग हर एक को उलझाए रखा है। कुछ लोग इन्हें लेकर बेचैन दिखते हैं तो कुछ इनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाते हैं। ऐसे में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मतगणना के पहले मिले समय का आनंद उठाने की सलाह दी है।
हमें अभी भी यकीन है, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की वहाँ सरकार बनेगी। अब इंतज़ार कीजिए, अब इस बीच में एक दिन का समय है। एक दिन के समय में जो है वो कुछ काम सेफोलॉजिस्ट को करने दीजिए, कुछ जोशियों को करने दीजिए, कुछ एग्जिट पोल वालों को करने दीजिए, ये सब उसका आनंद लीजिए। 8 तारीख को जो है वो सारी चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
राजनीतिक पंडित और कार्यकर्ता से लेकर आम लोग तक यह आकलन लगाने में व्यस्त हैं कि दोनों गठबंधनों खासकर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव पर हार जीत का क्या असर पड़ेगा। एनडीए की हार हुई तो नरेंद्र मोदी कमजोर होंगे या भाजपा मजबूत होगी, महागठबंधन हारा तो क्या लालू नीतीश की राजनीतिक दोस्ती बची रहेगी, जैसे कई सवालों के जवाब ढूंढे जाते रहे। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर महागठबंधन की जीत का दावा किया।
मैं ये कह सकता हूँ यकीन से कि महागठबंधन सरकार बड़े अच्छे वोटों से, अच्छे बहुमत से बनाएगा, इसमें कोई शंका नहीं।
बिहार चुनाव में इस बार करीब 57% मतदाताओं ने वोट डाले, जो कि 2010 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 5% ज्यादा है। सबसे ज्यादा 60% मतदान अंतिम चरण में दर्ज किया गया। साथ ही हर चरण में महिलाएं मतदान में पुरुषों से आगे रहीं। जदयू महासचिव और सांसद केसी त्यागी का मानना है कि ज्यादा संख्या में लोगों ने मतदान महागठबंधन को एक और मौका देने के लिए किया है।
वो नीतीश सरकार को एक और मौका देने के लिए है, जो हैवी टर्नआउट है, कि हम इस सरकार से प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार फिर आए।
चुनाव प्रचार के बहाने इस बार दिवाली के पहले ही दिवाली और पटाखे खूब चर्चा में रहे। खबरें यह भी हैं कि पटना के बाजार में बड़े नेताओं के नाम और तस्वीर वाले पटाखे पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसे ही माहौल में कल 8 नवंबर को मतगणना होगी, जो आखिरकार ये साबित करेगी कि किसके दावे सही निकले और किसके फुस हुए। मनीष शांडिल, बीबीसी पटना।
बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने भी इस बार चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाई है। जीतन राम मांझी परिवारवाद के आरोपों पर कई बार कह चुके हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और ये सारे आरोप गलत हैं। हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी ने उनके बेटे संतोष सुमन से मुलाकात की और पूछा कि उनके पिता पर लगने वाले परिवारवाद के आरोपों पर उनका क्या कहना है।
जहाँ तक राजनीति में परिवारवाद है और लोग कहते हैं, मेरे पिताजी का जो सवाल है और सब जगह इशारा मेरे तरफ होता है, और कोई तो मेरे परिवार में राजनीति में है नहीं, सिर्फ मैं ही आज पहली बार चुनाव लड़ा हूं। तो जहां तक मेरा सवाल है, तो मैं करीब 20-22 सालों से राजनीति में एक्टिव रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं बहुत साल तक। अभी 2 महीना पहले मैं पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी में आया, तो हमने मेहनत किया था और एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं इस पार्टी में भी और भाजपा में भी। तो हमको ऐसा नहीं था कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी में रहता तो वहाँ से हमको टिकट मिलता, वो मेरे पिताजी का कहीं भी उसमें योगदान नहीं था, अपने दम पर हम वहाँ पर थे। लेकिन पार्टी बनी तो मुझे लगा कि अब मेरे पिताजी की पार्टी बनी है तो मुझे इस पार्टी में सहयोग करना चाहिए, और उस नाते मेरी मेहनत और मेरी लगन के हिसाब से मुझे टिकट मिला है।
आपके पिताजी से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि संतोष जो हैं बाकी जो नेता पुत्र हैं उनसे अलग हैं, आप अपने वो कैसे अलग मानते।
देखिए, मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी लकीर खुद खींचना चाहता हूँ, अपना कार्य खुद करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ मेहनत में विश्वास रखता हूँ, सोच अगर विजन हमारा अच्छा है, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं भी अच्छा काम करूँगा और मुझे भी लोग जानेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी से तुलना नहीं करना चाहता।
लेकिन जैसे आज के दिन में जिस तरह लालू यादव के दोनों बेटों की पढ़ाई की बात पर सवाल उठते हैं, तो आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा बताइए।
जी, मैंने PhD की कर रखी है, नेट भी क्वालिफाई हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, डॉन बॉस्को में मेरी पढ़ाई हुई है, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से पढ़ा, शहीद भगत सिंह कॉलेज है वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस दोनों जगह मैंने किया। तो जहाँ तक मेरी पढ़ाई का है तो मैं शुरू से ही वहाँ भी मैंने अच्छा किया, अच्छा परफॉर्म किया। और दूसरे के बारे में, जहाँ तक लालू जी के बेटा के बारे में है, तो मुझे ज्ञात हुआ, मुझे मालूम चला है आप लोगों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि 9th पास हैं या एक लड़का BA किए हुए है। फिर भी मैं कहूँगा कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, सब उनके गार्जियन के क्या सोच रहा होगा, क्योंकि खुद सक्षम थे लालू जी, माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी, माने राबड़ी देवी जी भी रहीं, क्यों नहीं पढ़ा सकें, किस परिस्थिति में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके, या मैं नहीं समझता हूँ उनकी सोच है, उनके सोच पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।
जीतन राम मांझी का पुत्र होना कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है?
कहीं कहीं लोग फ़ायदा है कि एक नाम है, एक ब्रांड है कि जीतन राम मांझी का बेटा है। नुकसान हम इसलिए कहेंगे, कहीं पर लोग ओवर इंथुजियास्टिक हो जाते हैं या ज़्यादा सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा बड़ा बिग ब्रांड का बेटा है तो क्षेत्र में समय दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये ऐसी रूम में रहेगा। लेकिन ज़्यादा फायदा है, लोग को ये लगा कि अगर ये रहेंगे तो विकास होगा, एनडीए की सरकार बनने वाली है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन हम समझाना अपने सक्षम हो सके हैं और अपने क्षेत्र में बहुत भारी मार्जिन से हम जीत के आ रहे हैं।
ये बताइए कि आप और आपके पिताजी अलग अलग पार्टियों में थे, तो ये कैसे हुआ?
देखिए, हम शुरू से जब पढ़े दिल्ली में तो उसी समय से एबीवीपी की तरफ आकर्षित हुए, और मेरे पिताजी यहाँ राजनीति कर रहे थे, हम वहाँ पढ़ रहे थे, तो मेरी अपनी सोच थी और शुरू से मैंने वो पार्टी ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी में फिर यहाँ आने के बाद ज्वाइन किया। ऐसा कुछ नहीं था, आज सबका सोच होता है। मेरे पिताजी के पिता पुत्र का रिलेशन हमेशा बहुत ही अच्छा रहा, और राजनीतिक तौर पर कभी हमारे पिताजी ने ये नहीं कहा, कभी फोर्स नहीं किया कि आप उस पार्टी में हो तो मेरे पार्टी में आ जाओ।
लेकिन विचारों में कभी मतभेद नहीं हुए राजनीतिक तौर पर?
होता था, विचारों में मतभेद तो होगा ही, क्योंकि हम दूसरी पार्टी में थे, हम अब दूसरे आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे, लेकिन वो ठीक है, मतभेद है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है।
ये थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष, जिनसे बात कर रहे थे पंकज प्रियदर्शी। असहनशीलता को लेकर जारी बहस के बीच आज फिल्म अभिनेता अनुपम खेर दिल्ली में जनपथ से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। पुरस्कार वापसी अभियान के खिलाफ आयोजित इस मार्च में कलाकार, फिल्मकार और कई साहित्यकार शामिल होंगे। इससे पहले कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असहनशीलता से जुड़ी बहस में शामिल होते हुए कहा कि विरोध की आवाज को दबाना आर्थिक विकास के लिए खतरा है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
कलाकार, फिल्मकार और साहित्यकार देश के माहौल पर सवाल उठाते हुए लगातार पुरस्कार लौटा रहे हैं, लेकिन आज जनपद से राजपथ तक एक मार्च निकालकर पुरस्कार वापसी के सिलसिले पर सवाल उठाने की तैयारी है। नेशनल म्यूजियम से राष्ट्रपति भवन तक प्रस्तावित इस मार्च में कलाकार, साहित्यकार और फिल्मकार ही शामिल होंगे। मार्च की अगुवाई करने वाले जाने माने अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि देश में कहीं असहनशीलता का माहौल है। उन्होंने एक चैनल से कहा,
मुझे और बहुत सारे ऐसे करोड़ों हिंदुस्तानी हैं जिनको ऐसा नहीं लगता कि देश में इंटॉलरेंस का माहौल है। अब उन लोगों को पूरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है उनका कि उनको जो महसूस हो रहा है वो करें, तो पर मुझे भी अधिकार है और मेरे जैसे बहुत सारे करोड़ों हिंदुस्तानियों को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति साहब तक ये पैगाम पहुंचाएं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि देश में इंटॉलरेंस का माहौल है।
उधर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बहस में शामिल हो गए हैं। मनमोहन सिंह ने कल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में असहनशीलता को आर्थिक विकास के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा,
सुपरसेशन ऑफ डिसेंट और फ्री स्पीच पोजेस अ ग्रेव डेंजर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल। देयर कैन बी नो फ्री मार्केट विदाउट फ्रीडम।
असहमति और अपनी बात रखने की आजादी को दबाना आर्थिक तरक्की के लिए खतरा पैदा करता है। आजादी के बिना मुक्त बाजार नहीं हो सकता। ये थे मनमोहन सिंह के शब्द। मनमोहन की चिंता के उलट भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कहा कि देश में कहीं भी असहिष्णुता की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा,
आज देश जो है वो सहिष्णुता के साथ, आज देश जो है सौहार्द के साथ तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। देश तरक्की के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, प्यार के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी तरह का कोई सहिष्णुता का ना संकट है और न ही जो है सौहार्द का संकट है। लेकिन कुछ सियासी जो सूरमा है और विशेष तौर से तथाकथित सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा, वो सहिष्णुता के संकट के नाम पर जो सियासी शगुफा छेड़ रहे हैं वो बहुत बैड टेस्ट में है।
अनुपम खेर की अगुवाई में आज सड़क पर उतरने की तैयारी करने वाले कलाकार, फिल्मकार और लेखक भी यही बताना चाहते हैं कि देश का माहौल बिल्कुल ठीक है। अब देखना होगा कि दूसरा पक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर में होंगे। भारत प्रशासित कश्मीर में मोदी की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बड़ी संख्या में अलगाववादियों और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। मोदी पहली बार श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। अलगाववादियों ने इसके जवाब में मिलियन मार्च का ऐलान किया था, जिसे विफल करने के लिए श्रीनगर की नाकाबंदी की गई है। श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
सिक्योरिटी प्रतिबंधों, आवाजाही पर रोक और बड़ी संख्या में युवकों की गिरफ्तारी के कारण घाटी में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। श्रीनगर को रैली से एक दिन पहले ही सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से रेल सर्विस बंद हो गई और शिक्षा एवं व्यापारी गतिविधियां ठप हो गईं। विधानसभा में अपोजिशन के नेता अली मोहम्मद सागर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद ने नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए घाटी को जेल बनाकर रख दिया है।
एक जेल खाना बनाया गया है जम्मू कश्मीर, खासकर श्रीनगर को, और जो इन्होंने मैस अरेस्ट्स का सिलसिला शुरू कर दिया उसको बंद किया जाना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर को आना है यहाँ, तो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ अजाब पैदा करना है या लोगों के लिए नजात पैदा करना है। सारी हुकूमत की मशीनरी बैठ गई है, सारे तमाम अफसरों को इस काम पे लगा गया है कि आप लोगों को जमा करो।
गौरतलब है मिस्टर मोदी की रैली के जवाब में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सईद अली गिलानी ने मिलियन मार्च की घोषणा की थी और सरकार को आश्वासन दिया था कि इस मार्च के दौरान कोई हिंसा नहीं होगी। मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक ने मिलियन मार्च का समर्थन किया, लेकिन पुलिस ने गिलानी और मीरवाइज को घरों में नजरबंद कर दिया और यासीन मलिक को जेल भेज दिया गया। कई जिलों से सैकड़ों हुर्रियत कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने सोशल मीडिया पर मिलियन मार्च का प्रचार करने वालों के खिलाफ भी वारंट जारी कर दिए, जिस पर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया।
And we request the international community to come forward and save.
इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां कयूम ने विश्व समुदाय से अपील की कि वो नरेंद्र मोदी के दौरे की आड़ में लोगों पर ढाए जा रहे जुल्म का नोटिस लें। इस बीच मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह पाकिस्तान के साथ बातचीत की शुरुआत श्रीनगर से करेंगे तो हुर्रियत इसका समर्थन करेगी।
वो बातें कहें जो वो कह चुके थे, यानी ये कि कश्मीर के मसले का हल निकालने के लिए पाकिस्तान के साथ मज़ाकरात नागुज़ीर हैं। अगर इस अमल का आगाज उनके मुज़मिरात में हो, दौरे के मुज़मिरात में हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर ये तन्हा रस्मी और सियासी हुआ तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उनके दौरे के साथ।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि रैली के दौरान भी श्रीनगर और इर्द गिर्द के इलाकों में बगैर ऐलान के कर्फ्यू लगाया जाएगा। इनका कहना था कि प्रधानमंत्री की श्रीनगर में मौजूदगी तक इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है। बीजेपी के समर्थन वाली मुफ्ती सईद की गठबंधन सरकार को आशा है कि नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष सैलाब से पीड़ित जनता के पुनर्निवास के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करेंगे। तहम यहाँ के राजनीतिक वर्गों का कहना है कि इसमें 97,000 करोड़ रुपए सुरक्षा योजनाओं के लिए खास कर दिए गए हैं। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
तो प्रधानमंत्री मोदी की श्रीनगर यात्रा पर रहेंगी नजरें, और अब बारी ये जान लेने की कि आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है। दिलनवाज बताइए।
जी, रोज की तरह आज के अखबारों में भी खबरें हैं, लेकिन ध्यान खींच रहा है दैनिक भास्कर, जिसने एक संपादकीय निर्णय लेते हुए असहिष्णुता फैलाने वाले बयानों को प्रमुखता से न प्रकाशित करने का
सकारात्मक कदम है। बहुत
जी, बहुत सकारात्मक कदम है। और अखबार लिखता है कि हमारा सामना रोज ऐसे आपत्तिजनक बयानों से हो रहा है जो भारत की मूल भावना के विरुद्ध हैं। चूंकि ऐसे दावे, आरोप प्रत्यारोप बड़े नेता करते हैं, इसलिए इनको छापा जाता है और इससे उनका राजनीतिक हित वो साधते हैं।
दूसरी क्या खबरें?
एक और खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, वो कल छोटा राजन को दिल्ली लाया गया और उनसे सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ हुई। अमर उजाला लिखता है, छोटा राजन बोला मुंबई के 18 अफसर दाऊद के पेरोल पर थे। वहीं दैनिक जागरण बताता है, गिरफ्तार होने ही बाली आया था छोटा राजन। जिक्र करूंगा जनसत्ता के अपने चुनाववाद सर्वेक्षण का, जिसके मुताबिक प्रचार के दौरान नीतीश और लालू आगे बढ़े और भाजपा उनसे पिछड़ गई।
लगातार चुनावी सर्वेक्षण आ रहे हैं और लोग उलझ रहे हैं उनमें।
जी, अखबार ये लिखता है कि ये एग्जिट पोल नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मूल के दो भाइयों को अमेरिका में अलकायदा की मदद के लिए उन पर आरोप तय किए गए हैं। ये अमरीका में हुआ है और महंगाई भी थोड़ी सी जेब पर असर पड़ने की भी कुछ खबरें हैं। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ भारत के लिए सभी सेवाओं पर 0.5% का उपकर लगाया जाएगा। वहीं यदि जो आप रेलवे से यात्रा करते हैं और आपका टिकट आरक्षित है,
सब लोग करते हैं यात्रा रेलवे
जी,
से,
तो आरक्षित टिकट अगर आप कैंसिल कराएंगे यानी कंफर्म टिकट कैंसिल कराएंगे तो उसका कैंसिलेशन चार्ज दोगुना हो गया है और अमीरों की एलपीजी सब्सिडी खत्म करने का वक्त आ गया है, ये एक मिनिस्टर ने कहा है। तो एलपीजी सब्सिडी से जुड़ा फैसला भी सरकार ले सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए दिलनवाज पाशा। और अब बारी खेल खिलाड़ी की।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। मोहाली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टर्निंग विकेट पर खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच कल खेल के दूसरे ही दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। कल स्टंप के समय भारत ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट खोकर 125 रन बना लिए थे। इमरान ताहिर, डीन एल्गर और साइमन हार्मर की घूमती गेंदों के सामने सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने 105 गेंदों पर 47 रन बनाए, लेकिन उनके जोड़ीदार शिखर धवन की खराब फॉर्म जारी रही और वो बिना कोई रन बनाए फिलेंडर की गेंद पर एवी डिविलियर्स को कैच दे बैठे। मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने दूसरे विकेट के लिए 86 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। चेतेश्वर पुजारा 63 और कप्तान विराट कोहली 11 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 184 रनों पर समाप्त हुई और भारत को 17 रनों की मामूली बढ़त मिली। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर ने 37 और भारत दौरे पर अभी तक जमकर खेल रहे एबी डिविलियर्स ने 63 रन बनाए। हालांकि एक बार वो तब भाग्यशाली रहे जब अंपायर ने उन्हें आउट भी दे दिया, लेकिन वो रविंद्र जडेजा की नो बॉल थी। डिविलियर्स को अंततः अमित मिश्रा ने बोल्ड किया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान आशिम आमला ने भी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी का परिचय देते हुए 43 रन बनाए। एक ऐसा विकेट जिसके उछाल के बारे में खुद गेंदबाजों को पूरी तरह नहीं पता, उस विकेट पर भारत के आर अश्विन ने 51 रन देकर 5 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा ने भी 55 रन देकर 3 और अमित मिश्रा ने 35 रन देकर 2 विकेट लिए। इस तरह से भारतीय स्पिन तिकड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के तमाम 10 विकेट हासिल किए। आर अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 13वीं बार 5 या उससे अधिक विकेट अपने नाम किए। पहले दिन जहां 12 विकेट गिरे तो कल भी 10 विकेट गिरे। अब आज का दिन काफी हद तक मैच की दशा और दिशा तय कर देगा। पहली पारी की 17 रनों की बढ़त के बाद अब भारत के पास 142 रनों की कुल बढ़त है और उसके 8 विकेट बाकी हैं। पिच चाहे जैसी भी हो, लेकिन अभी किसी भी टीम की जीत की भविष्यवाणी खतरे से खाली नहीं है। उधर ब्रिस्बेन में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 157 रन बना लिए थे। स्टंप के समय कल केन विलियमसन 55 और विकेटकीपर जॉन वाटलिंग 14 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी कल 4 विकेट पर 556 रन के विशाल स्कोर पर समाप्त घोषित की। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 163 और उस्मान ख्वाजा ने 174 रनों की शतकीय पारी खेली। और अब बात मुक्केबाजी की। पिछले महीने ही अपना 30वां जन्मदिन मनाने वाले भारत के जाने माने मुक्केबाज विजेंद्र सिंह आज अपना दूसरा पेशेवर मुकाबला खेलेंगे। उनका मुकाबला इंग्लैंड के डीन गिलन से होगा। ये मुकाबला आयरलैंड के डबलिन शहर में होगा। पहले मुकाबले में विजेंद्र सिंह ने ब्रिटेन के सोनी विटिंग को बेहद दमदार अंदाज में नॉकआउट किया था। अब इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि विजेंद्र सिंह और डीन गिलन दोनों ही पुलिस विभाग में हैं। विजेंद्र सिंह और डीन गिलन के बीच होने वाले इस मुकाबले को बैटल ऑफ द बेजेस का नाम दिया जा रहा है। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
और अब कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार।
म्यांमार के राष्ट्रपति थीन सीन ने कहा है कि उनकी सरकार और देश की सेना रविवार को होने वाले चुनावों के नतीजों को स्वीकार करेगी। रूस ने बीते शनिवार मिस्र के सिनाई में हुए विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आने तक मिस्र के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। एथलेटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था IAAF ने डोपिंग स्कैंडल के संबंध में 4 लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कनाडा से अमरीका के लिए प्रस्तावित विवादित तेल पाइपलाइन की योजना को निरस्त कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अफ्रीकी देश बुरुंडी में राजनीतिक हिंसा के अंत का आह्वान किया है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमरीकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल बेन कार्सन ने मीडिया पर अपनी छवि खराब करने के आरोप लगाए हैं। पुर्तगाल की सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि पिछले महीने हुए आम चुनावों के बाद उसने सरकार बनाने के लिए दो धुर वामपंथी पार्टियों से समझौता कर लिया है। बीबीसी समाचार।
तो इससे पहले आपसे विदा लें, एक खबर का जिक्र करना चाहेंगे। bbcindi.com की खबर है, पाकिस्तान में एक टीवी शो में भारतीय जजों को लेकर हंगामा हो रहा है। टैलेंट हंट शो में भारतीय जजों पर किस तरह हंगामा हो रहा है, पढ़ने के लिए आइए bbcindi.com पर। इस कार्यक्रम में अभी के लिए विदा, ठीक एक घंटे बाद आपसे मुलाकात होगी विश्व भारती कार्यक्रम में। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। नमस्कार।